पाठ 23 अध्याय 16। उन विश्वासियों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक जो धीरे धीरे हमारे इब्रानी विश्वास की जड़ों और इस निर्विवाद वास्तविकता के प्रति जागरूक हो रहे हैं कि हमारा मसीहा यीशु पूरी तरह से यहूदी है, वह यह है कि परमेश्वर के वचन के विशुद्ध और पूर्ण रूप से इब्रानी सांस्कृतिक संदर्भ से कैसे निपटा जाए। एक और चुनौती जो इस चुनौती से उलझी हुई है वह ईसाई सिद्धांतों से नहीं बल्कि यहूदी सिद्धांतों से आती है और इसे आम तौर पर परंपरा कहा जाता है। जैसा कि हमने तोरह में निहित आहार नियमों का अध्ययन किया जिसे आम तौर पर यहूदी लोग कशरुत कहते हैं लेकिन जिसे गैर यहूदी समुदाय कोशेर खाने के रूप में कहते हैं। हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए था कि लेव्य व्यवस्था 11 में आहार कानून पर अनुभाग कितना छोटा है और इसराइल पर आहार संबंधी कितनी न्यूनतम आवश्यकताएं रखी गई हैं। अधिकांश बाइबलों में लेव्य व्यवस्था 11 की लंबाई 2 पृष्ठों से कम है, यहां तक कि व्यवस्था विवरण 14 में इसके समकक्ष के साथ मिलकर भी यहोवा द्वारा निर्धारित कोशेर खाने के नियमों के साथ 3 पूरे पृष्ठ भरना मुश्किल होगा। फिर भी यहूदी परंपरा ने खाने के बारे में परमेश्वर के अध्यादेशों के इन बुनियादी सरल और सीधे 3 पृष्ठों को सचमुच नियमों और निषेधों के हजारों पृष्ठों में बदल दिया है जिन्हें कई खंडों में भर दिया गया है। हम में से जो लोग ईश्वर के तोरा को गंभीरता से लेना चाहते हैं उनके लिए इब्रानी परंपराओं और रब्बी के फैसलों साथ ही ईसाई हठधर्मिता को यहोवा के मूल शब्दों से अलग करना आसान या सहज कार्य नहीं है। फिर भी पूजा और शिक्षा को बांझ और नीरस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपयोगी और सार्थक पूजा पाठ और शिक्षण के रूप में क्या बनाए रखना है और क्या अलग रखना है यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। कई परंपराएं सुंदर, मार्मिक और सत्य और अर्थ से भरी होती है लेकिन अन्य हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं, भले ही सतह पर वे बहुत अच्छी लगे। लेव्य व्यवस्था 16 से निपटने में हमारे सामने यही चुनौती है जो मुख्य रूप से योम किप्पुर नामक सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर निर्धारित अनुष्ठान पालन के बारे में है, प्रायश्चित का दिन जो जल्द ही आने वाला है। जब मैंने इस अध्याय पर इब्रानी टिप्पणियों की विशाल संख्या को प्रश्नना शुरू किया तो यह स्पष्ट हो गया कि उनमें से बहुत कम ने वास्तव में लेव्य व्यवस्था 16 को सीधे संबोधित किया। अधिकांश ने केवल उन दीर्घकालिक परंपराओं और व्यापक रब्बी के नियमों को समझाया जो योम किप्पुर के पालन के संबंध में सदियों से विकसित हुए थे। योम किप्पुर के पालन के तरीके में सबसे नाटकीय बदलाव 70 ईस्वी के बाद हुआ जब रोमन साम्राज्य द्वारा यरूशलेम शहर और पवित्र मंदिर को नष्ट कर दिया गया। शहर को जल्दी से फिर से बनाया गया लेकिन आज तक मंदिर फिर से खड़ा नहीं हुआ। इसलिए लेव्य व्यवस्था में हम जिन सभी अनुष्ठानों का अध्ययन कर रहे हैं जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें हम करने वाले हैं, उन्हें करने के लिए मंदिर और उसकी वेदियों और पुरोहितों की उपस्थिति की आवश्यकता थी। इसलिए यह कल्पना करना आसान है कि यदि यहूदी इन बहुमूल्य पर्वों और पवित्र दिवसों के अनुष्ठानों को उसी प्रकार मनाते रहेंगे जैसा कि वे 1000 वर्षों से करते आ रहे थे और ऐसा तब करना था जब अब कोई मंदिर नहीं था जो हमेशा से अनुष्ठानों का आवश्यक केंद्र रहा था, तो उन्हें लेवी संबंधी निर्देशों की व्याख्या करने के तरीके को पुनः आविष्कृत और संशोधित करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए था। उन्हें जो करना चाहिए था वह था यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना। उन्हें जो करना चाहिए था वह यह था कि मंदिर के बिना जो किया जा सकता था वह किया जाए और जब तक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता यह जकेल और रहस्योद्घाटन के अनुसार तब तक बाकी को छोड़ दिया जाए। इसलिए मैं हम सभी को एक चेतावनी देना चाहूंगा इससे पहले कि हम ईश्वर के तोरा को पुराने समझने और आत्मसात करने में एक और कदम बढ़ाए। हमें हमेशा शास्त्रों में वर्णित तोरा में ईश्वर के नियमों को उन लोगों आमतौर पर इब्रानी लोगों द्वारा मौखिक तोरह में उन नियमों के बारे में कही गई बातों से अलग रखना चाहिए। आज धार्मिक यहूदियों द्वारा पालन की जाने वाली बहुत सी सावधानी से आयोजित पूजा पद्धति का अक्सर केवल सीमित बाइबल कनेक्शन होता है। इसलिए लगभग 2000 साल से गैर यहूदी विश्वासियों द्वारा इन अंशों से यहूदी धर्म के किसी भी अवशेष को हटाने की प्रवृत्ति के साथ हम आधुनिक समय में खुद को एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंसा हुआ पाते हैं। यहूदी परंपरा की चट्टान और ईसाई रूपक व्याख्याओं और तोरह के निरंतर अस्तित्व को नकारने की कठिन जगह। मैं निश्चित रूप से किसी भी तरह से कुछ सुंदर और सार्थक यहूदी प्रथाओं और ईश्वर के घोषित पवित्र दिनों को मनाने के तरीकों को नीचा नहीं दिखा रहा हूं या उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, जिन पर चर्च को ध्यान देना चाहिए और किसी न किसी रूप में अपनाने पर विचार करना चाहिए। लेकिन हम अपनी इब्रानी जड़ों को फिर से खोजने की अपनी गंभीर इच्छा में इतने न उलझ जाए कि हम परमेश्वर की पवित्र चीजों और मनुष्यों की मात्र प्रशंसनीय चीजों के बीच अंतर करना भूल जाए। आइए देखें कि परमेश्वर ने प्रायश्चित के दिन योम किप्पुर के बारे में क्या कहा। लैव व्यवस्था 16 पूरा पर है। इब्रानी सोच में, और शायद यह सही भी है, योम किप्पर से अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक कोई घटना नहीं है प्रायश्चित का दिन। संक्षेप में, बाइबल में योम किप्पुर का उद्देश्य दो गुना है। एक, तंबू और बाद में मंदिर को पुजारी और आम लोगों द्वारा इसमें और इसके परिसर में लाई गई अशुद्धता से शुद्ध करना, और दो, लोगों, पुजारियों और महायाजक को शुद्ध करना। इसलिए इसका लक्ष्य एक अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध अभयारण्य बनाए रखना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर यहोवा का सांसारिक निवास स्थान अपवित्र हो जाता तो वह वहां अपनी उपस्थिति बनाए नहीं रख सकता था। यह असंभव है कि उसकी असीम पवित्रता सांसारिक अशुद्धता के साथ सहवास कर सकती है। यह कोई धारणा नहीं है, क्योंकि पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से उस आधार को बताता है। अब यह मूल और बाइबल का दृष्टिकोण कि योम किप्पुर पालन का ध्यान पवित्र स्थान को शुद्ध करना था, अंततः मंदिर के विनाश के बाद एक नए दृष्टिकोण के लिए रास्ता बदल गया कि योम किप्पुर मुख्य रूप से इज़राइल के लोगों के लिए पाप के न्याय और प्रायश्चित के लिए था। एक बार नहीं बल्कि दो बार मंदिर नष्ट हो गया। पहली बार उन्हें बेबीलोन में निर्वासित कर दिया गया और दूसरी बार उन्हें रोमन साम्राज्य में फैला दिया गया। दोनों बार लोगों ने खुद को अपनी अशुद्धता से शुद्ध होने में असमर्थ पाया और अपने पापों के लिए रक्त बलिदान का प्रायश्चित करने में असमर्थ थे। उस स्थिति से संतुष्ट नहीं थे या उन पर परमेश्वर के फैसले को स्वीकार करने और उनके लिए बहाली के अंतिम प्रावधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने समस्या के आसपास के तरीकों को तैयार करने के लिए अपनी मानवीय बुद्धि का उपयोग करना शुरू कर दिया। कई मामलों में इसका परिणाम परंपरा थी। तो फिर तंबू अशुद्धता से कैसे अपवित्र हो गया, इतना अपवित्र कि उसे साफ करने की जरूरत है, जबकि इस बात पर इतना ध्यान दिया जाता था कि पवित्र स्थान के आसपास कोई अशुद्धता न आए। यह वास्तव में कई तरीकों से हो सकता है, जैसे कि पुजारी अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन न करे लेकिन अपनी गलती से अनजान हो, या अशुद्ध भोजन गलती से आंगन में चला जाए, या तंबू के मैदान में किसी की मृत्यु हो जाए, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो तंबू के मैदान में प्रवेश करते समय किसी मरे हुए व्यक्ति को छू ले। लैव व्यवस्था अध्याय 11 से 15 में इस बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है कि अशुद्धता क्या होती है, और तथ्य यह है कि किसी न किसी हद तक, किसी न किसी समय हर इजरायली के लिए अशुद्धता अपरिहार्य थी। मुझे लगता है कि आधुनिक विश्वासियों के रूप में हमें इन अनुष्ठानों और नियमों के बारे में सिखाया जाना चाहिए, और यीशु द्वारा उन्हें बदलने के बाद भी हमें अशुद्धता की शाश्वत गंभीरता को समझने में मदद करने के लिए, और यह कि हमारी प्राकृतिक अवस्था में ईश्वर के बिना हम पर इसकी घातक पकड़ से बच नहीं सकते। अशुद्धता हर जगह है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग, गैर विश्वासी, बिना किसी व्यक्तिगत नैतिक विफलता के भी प्रवेश कर सकते हैं। याद रखें कि एक महिला जो केवल जन्म देती है वह किस अशुद्ध स्थिति में प्रवेश करती है, और यह अशुद्ध लोगों और चीजों के साथ आकस्मिक संपर्क से भी संक्रमित हो सकती है। पाप से बचने और अशुद्धता से बचने के बीच कोई पक्का संबंध नहीं था और न ही है। जैसा कि हमने लैव व्यवस्था 16 को पढ़ा है, हम आसानी से देख सकते हैं कि कि योम किप्पुर के ये विशेष अनुष्ठान कितने जटिल और जटिल हैं। परमेश्वर पहले पद में ही स्पष्ट कर देता है कि महायाजक का काम कितना खतरनाक है। पद एक हमें अध्याय 10 में वापस ले जाता है, जब यहोवा ने अपने क्रोध और अपने न्याय के अचानक आने का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए हारून के बेटों नादाब और अबीहू को भून डाला था, जो उसकी पवित्रता का उल्लंघन करने वालों पर था, और भी अधिक उन लोगों के लिए जिन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। इसलिए लैव्य व्यवस्था में इस बिंदु पर इन दो नव नियुक्त पुजारियों की भयानक मौतें बहुत हाल ही में हुई थीं। और कुछ मायनों में हम देखते हैं कि यहोवा मूसा को समझा रहा है कि हारून के दो बेटों ने क्या गलत किया और कैसे अन्य पुजारी, विशेष रूप से महायाजक हारून, इस तरह के भाग्य से बच सकते थे। संक्षेप में परमेश्वर मूसा से कहता है कि कोई भी पुजारी परम पवित्र स्थान परमेश्वर की उपस्थिति के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि जब परमेश्वर उसे ऐसा करने के लिए बुलाए। इस आदेश की अवज्ञा करने की सजा मौत है। मानो मूसा और कई हजार भयभीत गवाहों ने पहले से ही यह बात स्वयं नहीं समझ ली थी। आइए हम एक पल के लिए रुकें और कई खूबसूरत ईसाई गीतों में गाए गए एक वाक्यांश पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डालें कि विश्वासियों के रूप में अब हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। यह सच नहीं है और यह चर्च के आग्रह का परिणाम है कि पुराने नियम का उपयोग एक दरवाजे के रूप में किया जाना चाहिए, लेकिन अब इसे परमेश्वर के वचन के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। विश्वासियों के रूप में हम प्रतीकात्मक रूप से या अन्यथा परमेश्वर के अभयारण्य के सबसे पवित्र कक्ष में प्रवेश नहीं करते हैं जब हम बच जाते हैं। आम पुजारी, जिनके साथ हमें नए नियम में समान माना गया है, केवल पवित्र स्थान के बाहरी कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं, जिसे पवित्र स्थान कहा जाता है, परम पवित्र स्थान पिता और उनके मध्यस्थ महायाजक के लिए आरक्षित है। क्योंकि स्थाई मध्यस्थ और महायाजक यीशु है, इसलिए केवल वही परम पवित्र स्थान में यहोवा की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हो सकता है। हम यीशु के महायाजक पद के नियमित पुजारी के रूप में परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति रखते हैं, लेकिन जब तक भविष्य में इन भ्रष्ट शरीरों को परिवर्तित लोगों के लिए नहीं दिया जाता है, या हमारी मृत्यु के बाद जब केवल हमारी शुद्ध और पवित्र आत्माएं स्वर्ग में होती है, तब तक हम पवित्र स्थान से ज्यादा परमेश्वर के करीब नहीं पहुंच सकते। पद 3 कहता है कि जब प्रतिवर्ष उस एक दिन को हारून और उसके सभी उच्च याजक उत्तराधिकारियों को अगले वर्षों में परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति दी गई और उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया, हत्तात बलि अर्थात शुद्धिकरण बलि के लिए एक बछड़े की आवश्यकता होती थी, तथा ओला अर्थात होम बलि के लिए एक मेरहे की भी आवश्यकता होती थी। इसके बाद हम पाते हैं कि महायाजक अपने दैनिक कर्तव्यों के दौरान जो सामान्य शानदार वस्त्र पहनते थे, नीला लबादा, रत्न जरीत छाती की प्लेट और सुंदर और महंगे कपड़े उसे उतार दिया जाना था और उनकी जगह उसे बहुत ही साधारण सफेद लिनन के कपड़े पहनने थे। लोगों के सामने जहां महायाजक अपने सामान्य कर्तव्यों का पालन करता था, उसने जो शानदार और महंगे कपड़े पहने थे, उससे यह स्पष्ट हो गया कि महायाजक इज़राइल में सबसे पवित्र व्यक्ति था और परमेश्वर के मध्यस्थ के रूप में वह इज़राइल और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बीच खड़ा था। लेकिन यहोवा की उपस्थिति में खड़े होने पर महायाजक ने महीन लिनन से बने सादे सफेद कपड़े पहने थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि ब्रह्मांड के परमेश्वर की अतुलनीय पवित्रता की तुलना में पृथ्वी पर सबसे पवित्र व्यक्ति भी निम्न स्थिति को धारण करता है। और निश्चित रूप से, जैसा कि हम अब उम्मीद करते हैं और वास्तव में छात्रों के रूप में जो तोरहा में इतनी दूर तक आ गए हैं, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह एक दिया हुआ नियम है। इससे पहले कि हारून इन दासों के कपड़े पहने, उसे पानी में शुद्ध होना है, उसे अशुद्धता को दूर करने के लिए जीवित जल में खुद को डुबाना है। यह कोई संयोग नहीं है कि दानियेल और यहेजकेल दोनों ने प्रभु के सामने खरे स्वर्गदूतों को सादे सफेद वस्त्र पहने हुए बताया है। न ही हमें प्रकाशित वाक्य 19:8 के शब्दों को अनदेखा करना चाहिए कि किसी दिन हम जो विश्वासी हैं अपने प्रभु के सामने खड़े होने पर क्या पहनेंगे। प्रकाशित वाक्य 19:8, और उसे शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पद 5 और 6 हमें योम किप्पुर अनुष्ठानों की इस दोहरी प्रकृति को दर्शाते हैं। एक पूरे के रूप में इज़राइल के लोगों को एक राष्ट्र या एक मंडली के रूप में अपने राष्ट्रीय हत्तात शुद्धिकरण बलिदान के रूप में 2 बकरे चढ़ाने हैं। उच्च पुजारी इस मामले में हारून को अपनी ओर से व्यक्तिगत हत्तात बलिदान के रूप में 1 युवा बैल चढ़ाना है। अब हमें बलि का बकरा कहे जाने वाले अनुष्ठान के नियम और अध्यादेश मिलना शुरू हो गए हैं। ये एक दिलचस्प अनुष्ठान है जो अर्थ से भरपूर है और जिसने सदियों से यहूदी लोगों को मंत्रमुग्ध कर रखा है। हारून को दोनों बकरों को लेकर उन्हें तंबू के पवित्र स्थान के बाहर खड़ा करना है। इसके बाद उसे बकरियों पर चिट्ठी डालनी है। चिट्ठियों के परिणाम से यह तय होगा कि दोनों बकरों में से कौन सा बकरा इज़राइल के लोगों की शुद्धि के लिए हत्तात बलि बनेगा, दूसरा बकरा बलि का बकरा बनेगा जिसे छोड़ा जाएगा। यहां पद 8 में संपूर्ण बाइबल में सबसे विवादास्पद वाक्यांशों में से एक प्रस्तुत किया गया है, और यह बकरियों के भाग्य को चुनने की प्रक्रिया के बारे में कहता है। यहोवा के लिए 1 भाग और अजाजेल के लिए 1 भाग। अजाजेल क्या है या कौन है, इस पर न केवल ईसाई विद्वानों के बीच बल्कि यहूदियों के बीच भी बहस का कोई अंत नहीं है। आपकी अधिकांश बाइबलों में शायद अजाजेल शब्द भी नहीं होगा बल्कि बलि का बकरा शब्द प्रतिस्थापित किया गया है, लेकिन अजाजेल मूल इब्रानी है और एक अच्छा सामंजस्य आपको यह वास्तविकता दिखाएगा। इस पद के साथ समस्या का एक हिस्सा यह है कि यदि इसे सबसे शाब्दिक रूप में लिया जाए तो रीति रिवाजों के आधार पर जिस समय यह लिखा गया था उसका अर्थ हमारे लिए बहुत सहज नहीं है। अधिक सहज व्याख्याएं आम तौर पर 2 हैं। पहली यह है कि अजाजेल एक दुर्लभ इब्रानी संज्ञा है जिसका अर्थ है पूर्ण विनाश। दूसरा यह है कि महान इब्रानी आशराशि कहते हैं कि अजाजेल का अर्थ है पत्थर की खाई, क्योंकि ईसा के समय तक बलि के बकरे से निपटने का पारंपरिक तरीका उसे चट्टान से पीछे की ओर धकेलकर उसकी मौत कर देना था। हालांकि ये दोनों व्याख्याएं वास्तव में गंध परीक्षण में पास नहीं होती हैं। सबसे पहले शास्त्रों में पत्थर की चट्टान से धक्का देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे कई वर्षों बाद जोड़ा गया था, और दूसरा इब्रानी साहित्य में इस दुर्लभ शब्द अजाजेल का एकमात्र अन्य उल्लेख हनोक की पुस्तक में है जो निश्चित रूप से प्रेरित नहीं है बल्कि विद्वानों द्वारा छद्मलेख साहित्य कहे जाने वाले साहित्य का हिस्सा है, और हनोक में अजाजेल एक विशिष्ट दानव का नाम है। अधिक व्यापक और हाल ही में प्रचलित राय यह है कि अजाजेल वास्तव में एक राक्षस या किसी अन्य प्रकार की दुष्ट आत्मा का नाम था जो जंगल में रहती थी। इन आयतों में हम जो विचार विकसित होते हुए देखते हैं वह यह है कि 2 बकरियों में से 1 यहोवा के लिए एक पवित्र बलि होगी और दूसरी को जंगल में अजाजेल के अपवित्र क्षेत्र में भेजा जाएगा, जो एक राक्षस है जो शैतान का प्रतिनिधित्व करता है, या हो सकता है कि शैतान ही हो। हम कुछ मिनटों में इस पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। पद 10 कुछ स्पष्ट करता है कि जैसा कि हम जल्द ही अजाजेल मामले पर फिर से विचार करते हैं, एक महत्वपूर्ण घटक है। यह है कि बकरी जिसे अजाजेल के लिए भेजा जाना है को जीवित छोड़ दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में इस बकरी का वध नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी भी तरह से बलि माना जाना चाहिए। यह माना जाता है कि यह जंगल में मर जाएगा लेकिन इसे अनुष्ठान के रूप में वध नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि जो बकरी यहोवा के लिए है वह वास्तव में एक बलि है और उसे मार दिया जाएगा। पद 11 हमें बताता है कि जब एक बार चिट्ठी निकल जाती है और प्रत्येक बकरे का भाग्य तय हो जाता है तो बलि के बैल शुद्धिकरण के लिए को हारून और उसके घराने की ओर से बलि किया जाना चाहिए, और फिर होम बलि की वेदी जहां बैल को जलाया जा रहा है कि गर्म अंगारों से हारून को इन अंगारों से भरा एक अग्निपात्र लेना चाहिए, कुछ विशेष धूप बत्ती डालनी चाहिए और फिर पवित्र स्थान के अंदर जाना चाहिए। अब खतरा वास्तव में तब शुरू होता है जब हारून महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने वाला होता है, जो अपनी उपस्थिति में अशुद्धता का एक कण भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हारून अपना धुआं उगलता हुआ अग्निपात्र या सेंसर लेता है, पर्दा परोखेत खींचता है, जो पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग करता है और यहोवा के सांसारिक निवास स्थान में प्रवेश करता है। जैसे ही उसके गले में गांठ उठती है, हारून कप्पोरेट दया के आसन के पास जाता है और उसके बगल में सेंसर रख देता है। धुआं, जिसे बादल के रूप में वर्णित किया गया है, अब दया के आसन से निकलने वाले करूबों के पंखों के बीच के क्षेत्र को घेर लेता है। यह वह स्थान है जहां परमेश्वर की उपस्थिति पृथ्वी पर मनुष्य से मिलती है। दया आसन के चारों ओर धुएं का क्या महत्व है? खैर, कुछ बिंदु दिमाग में आते हैं। सबसे पहले यह कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर को देखकर जीवित नहीं रह सकता। धुआं एक पर्दे की तरह काम करता था, जो हारून को वाचा के संदूक और कप्पोरेट का सामना करने की अनुमति देता था। ईश्वर के साथ एक ही कमरे में उपस्थित होने के लिए फिर भी धुएं के बादल ने ईश्वर को अस्पष्ट कर दिया, ताकि हारून सीधे ईश्वर को न देख सके। दूसरा, बादल के रूप में धुएं का इस निरंतर उल्लेख से कोई स्पष्ट संबंध है कि ईश्वर बादल के रूप में इज़राइल के साथ यात्रा करता था। निष्कर्ष, धुएं का बादल ईश्वर के लाभ के लिए नहीं था, यह उच्च पुजारी के लिए एक सुरक्षा के रूप में था, नहीं तो वह मर जाएगा। हारून बैल के खून के कटोरे में अपनी उंगली डुबोता है और कुछ खून कप्पोरेट के सामने छिड़कता है, दया का आसन ढक्कन जो वाचा के संदूक के ऊपर बैठता है। हम जानते हैं कि यह दया के आसन का सामने वाला हिस्सा है, जहां खून छिड़का जाता है, क्योंकि इसे पूर्वी छोर कहा जाता है और परम पवित्र स्थान पूर्व की ओर है। इसके बाद हारून भी ऐसा ही करता है, ठीक 7 छींटों का उपयोग करके, बलि दिए गए बकरे के खून का उपयोग करके। इस प्रकार दोनों बलियों का खून पेश किया जाता है, पहला हारून के लिए व्यक्तिगत रूप से बैल, और दूसरा पूरे इजरायली लोगों के लिए बकरा, और इस प्रकार हारून और इजराइल की पूरी मंडली के लिए प्रायश्चित किया जाता है। पद 16 हमें याद दिलाता है कि इस प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य पवित्र स्थान को तुम्होट से शुद्ध करना है। यह वह अशुद्धता है जो इसराइलियों द्वारा लाई गई थी, यहां तक कि उनके पापों द्वारा लाई गई थी। याद रखें कि कुछ अशुद्धताएं पाप से नहीं लाई जाती हैं और कुछ पाप से लाई जाती हैं। ये अनुष्ठान तंबू को सभी प्रकार की अशुद्धता से शुद्ध करते हैं। मुझे लगता है कि पद 16 के अंतिम आधे भाग में अंतिम कुछ शब्द विशेष रूप से मार्मिक हैं। ये कहता है कि परमेश्वर इज़राइल के साथ रहता है, उनके कूच के बीच में, उनकी सारी अशुद्धता के बीच में। कितना महान परमेश्वर, कितना दयालु परमेश्वर। इज़राइल की अंतर्निहित अशुद्धता के बावजूद परमेश्वर ने उनके लाभ के लिए उनके बीच रहना चुना, क्योंकि वह उनसे प्रेम करता था। केवल यह अपेक्षा करता था कि वर्ष में एक बार उसके पवित्र निवास स्थान को इस सभी मानव निर्मित प्रदूषण से साफ किया जाए जो इसे अपवित्र करता है। अब जबकि पवित्र स्थान को शुद्ध कर दिया गया है, अन्य पवित्र चीजों को भी शुद्ध करने की आवश्यकता है। इसलिए पद 18 में होमबलि की वेदी पर बैल और बकरे का थोड़ा खून लगाया गया है। इसके बाद पद 20 से शुरू करते हुए हमें सबसे आश्चर्यजनक और अत्यंत दृश्य प्रदर्शन देखने को मिलते हैं कि कैसे हमारे पाप को हमसे दूर ले जाया जाता है, एक प्रतिस्थापन में स्थानांतरित किया जाता है, जो एक निर्दोष जीवित प्राणी होना चाहिए, और फिर पाप को हमसे दूर कर दिया जाता है। न केवल इसे ढक दिया जाता है, बल्कि हम इससे मुक्त हो जाते हैं। मूल रूप से बलि का बकरा इस्तेमाल करने वाले इजरायली यीशु मसीह द्वारा हमारे लिए स्थायी रूप से किए जाने वाले काम की छाया मात्र थे। यहां तक कि बलि का बकरा बनाने की रस्म, जिसके तहत सभी इजरायली असहाय होकर, विस्मय में खड़े होकर देख सकते थे कि परमेश्वर ने उन्हें उनके पापों से शुद्ध करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक था वह सब किया, आज हमारी स्थिति की छाया मात्र है। हारून बलि के बकरे के सिर पर दोनों हाथ रखता है, अजाजेल के लिए चुना गया बकरा, और इस बकरे पर वह इज़राइल के पापों को स्वीकार करता है। पिछले साल के प्रायश्चित के दिन से लेकर पिछले साल तक इज़राइल के सभी अपराध और इज़राइल के अधर्म का भार नर बकरे पर डाल दिया जाता है और बकरे को जंगल में भेज दिया जाता है, बंजर रेगिस्तान में कभी वापस न आने के लिए। आइए हम अजाज़ेल पर अपनी चर्चा शुरू करें। ऐसा माना जाता है कि अजाज़ेल रेगिस्तान के जंगल का राक्षस शासक है। अगर इसमें जादू और टोना टोटका की बू आती है तो मुझे डर है कि ऐसा ही है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जादू और टोना टोटका ईश्वरीय रूप से निर्मित आध्यात्मिक दुनिया का विकृत उपयोग करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा की दुनिया मौजूद नहीं है। हम जानते हैं कि जंगल को अक्सर बाइबल में दुष्टता और मौत की जगह के रूप में माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे अंधकार छोशेक को एक दुष्ट गुण माना जाता है। हम पढ़ते हैं कि राक्षसों को बाहर निकालकर जंगल एक सूखी जगह और प्रतीकात्मक रूप से बेजान जगह पर भेज दिया जाता है। अब हमारे लिए सवाल यह है कि क्या अजाज़ेल का मतलब बुराई का प्रतीक है या यह सचमुच एक वास्तविक बुरी शक्ति, एक विशेष राक्षस शासक का नाम है। इससे पहले कि मैं इस पर अपनी राय पेश करूं, आइए यहां क्या हो रहा है इसका एक सिंहावलोकन करें। दो बकरे चुने गए हैं, एक परमेश्वर के लिए है, दूसरा किसी ऐसी चीज के लिए है जो स्पष्ट रूप से परमेश्वर के विरुद्ध है। जो बकरा चिट्ठी डालकर तय किया जाता है कि वह परमेश्वर के लिए है, जो पवित्रता के लिए अलग रखा गया है, यहोवा के लिए बलिदान के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, इसके खून से इज़राइल के पापों का प्रायश्चित किया जाएगा। दूसरा बकरा जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करने के लिए नामित किया गया है, इस चीज का नाम अजाज़ेल है। इसे इज़राइल के पाप और अशुद्धता के भंडार और वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इज़राइल के लोगों के लिए मध्यस्थ के रूप में उच्च पुजारी इज़राइल के सभी पापों और अशुद्धता को औपचारिक रूप से बलि के बकरे में या उस पर स्थानांतरित करता है, वह बकरा जिसे अजाज़ेल के लिए पाप के भंडार के रूप में नामित किया गया है। फिर बलि के बकरे को जंगल में ले जाया जाता है, इज़राइल के पाप और अशुद्धता को दूर बुरी ताकत के क्षेत्र में भेज दिया जाता है। हनोक की पुस्तक का अजाज़ेल एक पतित दिव्य प्राणी, एक बेनई एलोहिम जिसे ईश्वर का पुत्र भी कहा जाता है था, जो मानव महिलाओं के साथ संबंध रखता था। उसे जादू और टोना टोटका का अधिकार दिया गया था। उसका क्षेत्र जंगल की नुकीली चट्टान थी और उसे एक बहुत शक्तिशाली स्वर्गीय देवदूत की निगरानी में वहां रहने के लिए निर्वासित किया गया था। अब मैं जोर देकर कहूंगा कि इनमें से ज्यादातर बातें प्राचीन इब्रानी किंवदंती हैं, फिर भी यह हमें कम से कम मसीह के जन्म से लगभग 100 साल पहले अजाज़ेल के बारे में यहूदी दृष्टिकोण को समझने में मदद करने के लिए मूल्यवान है। मुझे लगता है कि लैव्य व्यवस्था 16 में बलि के बकरे के बारे में जो बताया जा रहा है वह यह है कि सभी बुराइयों का स्रोत शैतान अजाज़ेल का प्रतीक है और अजाज़ेल को वह सब वापस लेने के लिए मजबूर किया जाता है जो उसने दुनिया में भेजा था, पाप और अशुद्धता। इस बकरे की कल्पना करें जो अलौकिक रूप से अपने साथ इज़राइल के सभी अधमर्मों को ले जा रहा है, जिसे परमेश्वर ने उनसे दूर कर दिया है, शैतान के क्षेत्र में जा रहा है। ये बकरा उन सभी चीजों से भरा हुआ है जिसका उपयोग शैतान ने एक बार परमेश्वर को हराने के लिए किया था, उसके लोगों को हराने के माध्यम से। ये ऐसा है जैसे दुश्मन बार के ऊपर एक हथगोला फेंक रहा हो, केवल इसलिए कि आप उसे उठाकर वापस उसकी गोद में फेंक दें, और वह शैतान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। कुछ मायनों में यह बलि का बकरा ईश्वर की अजेयता और मुक्ति के लिए ईश्वर की योजना की अनिवार्यता का प्रदर्शन है। सभी के लिए यह एक प्रदर्शन है कि शैतान यहोवा की योजनाओं को आसानी से नहीं हरा सकता। मेरे विचार में ईश्वर बलि के बकरे की रस्म के एक पहलू में शैतान का मजाक उड़ा रहा है। अब कुछ अन्य विवरण और फिर मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि योम किप्पुर के पालन में किस प्रकार परिवर्तन किया गया, विशेष रूप से 70 ईस्वी में मंदिर के नष्ट हो जाने के बाद। पद 25 से 28 में बताया गया है कि हत्तात बलि के केवल कुछ हिस्सों को ही वेदी पर जलाया जाना चाहिए और अन्य हिस्सों को छावनी के बाहर ले जाकर जलाया जाना चाहिए। होम बलि की वेदी पर केवल चर्बी और मांस के कुछ हिस्से और कुछ अंतधियां जलाई जाती थी। खाल, बैल और बकरी की आंतों की सामग्री और मांस के बचे हुए हिस्से को इसराइल के परिसर से भी हटा दिया जाना था। यहां विचार यह है, परमेश्वर को अर्पित किए गए वे हिस्से एक निर्धारित बलि थे, वे पवित्र थे। उन हिस्सों को जलाने से यहोवा को मीठी सुगंध आती है, ये एक बहुत ही सकारात्मक और आज्ञाकारी बात है। उन जानवरों के बचे हुए हिस्से जिन्हें छावनी के बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर ले जाया जाता है और आम लकड़ी की आग पर जलाया जाता है, बलि का दूसरा हिस्सा नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि इन हिस्सों की आग से नष्ट कर दिया जाए। यह उन हिस्सों से छुटकारा पाना है जो परमेश्वर के लिए नहीं है, जो हिस्से पवित्र नहीं है और इसलिए उनका कोई मूल्य नहीं है। यह सिद्धांत रूप में बलि का बकरा जंगल में भेजने के समान ही है, जिससे जो चीजें परमेश्वर की नहीं हैं या परमेश्वर के लिए नहीं हैं, अर्थात पाप और अशुद्धता, शत्रु के पास वापस भेज दी जाती है। इसके बाद प्रायश्चित का दिन कब मनाया जाएगा, यह निर्दिष्ट किया गया है वर्ष के 7वें महीने के 10वें दिन, और इस दिन यह एक विशेष सप्त होगा, एक तरह का सुपर सप्त। मैं स्पष्ट कर दूं, यह 7वें दिन का सप्त नहीं है, यह एक अलग उद्देश्य के लिए एक अलग सप्त है। 7वें दिन के सप्त के विपरीत, जो कि आनंद और अच्छे खाने का दिन है, प्रायश्चित का दिन सप्त एक ऐसा दिन है जैसा कि बाइबल कहती है, खुद को कष्ट पहुंचाने के लिए। ये खुद को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहा है, ये खुद को वंचित करने की बात कर रहा है, और यह वंचितता उपवास से शुरू होती है 7वें दिन के 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 एक परिचित शब्द का उपयोग करूं तो वह परहेज होगा। भोजन, काम, पेय, स्नान, सेक्स से दूर रहें। यदि यह व्यक्तिगत रूप से आनंददायक है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग यह कहना जारी रखते हैं कि ओह हां, लेकिन यह केवल इज़राइल के लिए था, देखिए पद 29 में क्या कहा गया है, और तुम्हारे बीच रहने वाले प्रवासी के लिए है। ये देशी यानी गैर मूल निवासी लोग जो इज़राइल में शामिल हो गए हैं, यहां तक कि गुलाम जो इज़राइल में शामिल नहीं हुए हैं लेकिन जो इज़राइल के बीच रह रहे हैं, उन्हें योम किप्पुर के लिए इस विशेष सप्त का पालन करना चाहिए और इससे लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि वे परमेश्वर की नजर में इज़राइल के समुदाय का हिस्सा हैं। इसलिए उन्हें भी इस अद्भुत दिन पर अपनी अशुद्धता को दूर करना चाहिए और पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। अंत में यह स्पष्ट किया गया है कि योम किप्पुर
कोई अस्थाई अध्यादेश नहीं है, जैसा कि पद 34 में कहा गया है, यह युगों के लिए एक कानून है, यह स्थाई है।
अब आइए संक्षेप में देखें कि लैव्य व्यवस्था 16 में दिए गए निर्देश के बाद से योम किप्पुर का पालन कैसे विकसित हुआ है। आधुनिक धार्मिक यहूदी योम किप्पुर को सभी पर्वों में सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत से ही कहीं ना कहीं रब्बियों ने, जिन्होंने अंततः इब्रानियों के धर्म को नियंत्रित किया, यह तय किया कि प्रायश्चित के दिन परमेश्वर उस व्यक्ति का पिछले साल का न्याय करते हैं, यह निर्धारित करते हैं कि उस व्यक्ति का नाम आने वाले साल के लिए जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा या नहीं, और उस निर्णय को सील कर दिया जाता है। निर्णय प्रक्रिया 10 दिन पहले रोश हशनाह यहूदी नववर्ष से शुरू होती है। रोश हशनाह और योम किप्पुर के बीच 10 दिनों की अवधि के लिए एक व्यक्ति को उस निर्णय के दिन की तैयारी के रूप में आंतरिक प्रतिबिंब पर बहुत समय बिताना चाहिए और ईमानदारी से पश्चाताप करना चाहिए,
क्योंकि योम किप्पुर बहुत गंभीर और शांत है। इसलिए पश्चाताप के उन 10 दिनों के दौरान शादियां नहीं की जा सकती। योम किप्पुर पर गरीबों को विशेष दान दिया जाता है। कुछ रूढ़िवादी संप्रदायों के सदस्य योम किप्पुर पर पूरी तरह से सफेद वस्त्र पहनेंगे। यह स्पष्ट रूप से इसराइल के उच्च पुजारी के विशेष योम किप्पुर वस्त्रों से जुड़ा है, और साल के किसी भी अन्य दिन के विपरीत यहूदी पुरुष शाम की आराधनालय सेवाओं में तलीत प्रार्थना शॉल पहनेंगे। अन्य सभी परिस्थितियों में परंपरा यह है कि तलीत का उपयोग केवल सुबह की आराधनालय सेवाओं के लिए किया जाता है।
योम किप्पुर के बारे में बहुत कुछ बदल गया है। एक समय इसे पश्चाताप की शुद्धि के राष्ट्रीय दिवस के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब यह बहुत ही व्यक्तिवादी हो गया है। चूंकि 70 ईस्वी के बाद कोई मंदिर नहीं था, इसलिए यहूदी खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाते हैं। अगर बलिदान के लिए कोई मंदिर नहीं है और उनके लिए प्रायश्चित करने के लिए कोई उच्च पुजारी नहीं है, तो वे अपनी अशुद्धता से कैसे शुद्ध हो सकते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं। 800 ईस्वी के आसपास कुछ यहूदियों के बीच एक अनुष्ठान शुरू हुआ, जिसे आज भी कई रूढ़िवादी समूह जारी रखते हैं। इसे कपरोट कहा जाता है। इस अनुष्ठान में एक नर मुर्गा चुनता है और एक मादा मुर्गी चुनती है, और जोर से प्रार्थना करते हुए मुर्गों को सचमुच यहूदी उपासक के सिर के ऊपर 3 बार घुमाया जाता है। प्रतिस्थापित करें, मेरी प्रतिनिधि भेंट, मेरा प्रायश्चित, यह मुर्गी मृत्यु को प्राप्त होगी, लेकिन मुझे शांति का एक लंबा और सुखद जीवन मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इस प्रथा पर और कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है।
एक और आधुनिक दृष्टिकोण यह है कि प्रायश्चित दिवस के लैव्य व्यवस्था अनुष्ठानों की श्रृंखला जो पहले पूरी होती थी, आज प्रार्थना, पश्चाताप और अच्छे कर्मों के द्वारा पूरी होती है। वास्तव में मूल पाप की अवधारणा भी, जिसके अनुसार सभी मनुष्य, जिसमें इसराइली भी शामिल हैं, पापी स्वभाव के साथ पैदा होते हैं, ने इस विश्वास को जन्म दिया है कि हर कोई जीवन की शुरुआत अच्छे और शुद्ध रूप में करता है, और इसे उसी तरह बनाए रखना पूरी तरह से संभव है। बेशक सत्य के बजाय इस पर जोर देने का मतलब है कि मोक्ष, जैसा कि विश्वासी इसे समझते हैं, कि आवश्यकता भी नहीं है, बशर्ते कि कोई व्यक्ति उस स्वच्छ और पवित्र स्थिति को बनाए रख सके जिसमें वह पैदा हुआ था, कि वास्तव में एक व्यक्ति अपने आप धार्मिकता पा सकता है, कि अगर कोई व्यक्ति तोरह का ईमानदारी से पालन करता है तो वह खुद को उचित ठहरा सकता है।
यह मानते हुए कि कुछ पाप दूसरों की तुलना में बहुत अधिक गंभीर माने जाते हैं, यहूदी धर्म कहता है कि परमेश्वर के नाम को अपवित्र करने जैसे गंभीर पापों का प्रायश्चित केवल पश्चाताप, प्रार्थना या प्रायश्चित दिवस की आधुनिक परंपराओं का पालन करके नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह व्यक्ति की अपनी मृत्यु है जो उन सबसे गंभीर पापों का प्रायश्चित करती है। इसलिए मृत्यु में आपने अपनी अशुद्धता और पाप की कीमत चुकाई है, और अब आप स्वच्छ हैं और आने वाली दुनिया में जीने के योग्य हैं।
क्या यह आश्चर्यजनक और दुखद नहीं है कि लोग इसराइल, यहूदी और अन्य जाति मसीहा यीशु को स्वीकार करने से बचने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? आइए नए नियम के एक अंश को पीआर हैचकर इसे समाप्त करें, जो बहुत ही सुंदर ढंग से समझाता है कि योम किप्पुर किस लिए है तथा कैसे यीशुआ हामशियाख इसे पूरा करेगा और इसके कुछ पहलुओं को पूरा कर चुका है। अब जबकि हमें इन लेवी संबंधी बलिदानों और अनुष्ठानों के बारे में बेहतर जानकारी मिल गई है, तो मैं सोचता हूं कि आप इब्रानियों 9 को कहीं अधिक समझने योग्य और अर्थपूर्ण पाएंगे। इब्रानियों अध्याय 9 पूरा पढ़ें। जैसा कि मैंने इस पाठ में पहले कहा था, मसीहा यीशु ने परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया है, हमने नहीं। यीशु की मृत्यु तक सभी बलिदान संबंधी अनुष्ठान आने वाली घटनाओं की छाया मात्र थे।
उन्होंने वास्तव में अपने तात्कालिक उद्देश्य को पूरा किया और यीशु के आगमन से पहले के पापों का प्रायश्चित किया, लेकिन यीशु अपने स्वयं के लहू के माध्यम से इसे दूसरे और उच्चतर स्तर पर ले जाएगा।
अगले सप्ताह हम योम किप्पुर के बारे में थोड़ा और बात करेंगे और फिर लेव्य व्यवस्था 17 में जाएंगे, जिसमें अध्यायों की एक श्रृंखला शुरू होती है जो इज़राइल के अस्तित्व के दो महत्वपूर्ण पहलुओं के मूल सिद्धांतों के बारे में बात करती है, जो एक दूसरे से बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं, भोजन और बलिदान।